हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय श्लोक इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 24। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। महारानी कुंती कहती हैं, विशान महात्म्य पुरुषाद दर्शनात् सत्सभाया वनवासकृच्छ्रितः मृदि मृदिनेकमाः रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्महरि विरक्षिता विशान्महात्मे पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः मृदि मृदिनेकमाः रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्महरि विरीक्षिता विशान्महात्मे पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः मृदि मृदिनेकमाः रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्महरि विरक्षिताः विशान्महात्मे पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः मृदि मृदिनेकमाः रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्महरि विरक्षिता विशान्महात्मे पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः मृदि मृदिनेकमाः रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्महरि विरक्षिता शब्दात् विषात् विष से महाग्नि प्रबल अग्नि कांड से पुरुषः अद मनुष्य के भक्षक से दर्शनात् मल युद्ध करके असत् दुष्ट की सभाया सभा से वनवास यानी जंगल में प्रवासित कृच्छ्रता कष्ट से मृदे मृदे युद्ध में बारंबार अनेक महारथा बहुत सारे बड़े बड़े सेना नायक अस्त्रता हथियार से द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र के अस्त्रता अस्त्र से च तथा आसमा था हरे हे भगवान हरि अभिरक्षिता पूर्णतया सुरक्षित। अनुवाद कुंती महारानी कहती हे कृष्ण आपने हमें विषमय भोजन से महान अग्निकांड से मनुष्य भक्षकों से दुष्ट सभा से वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि यहाँ पर घातक मुठभेड़ों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक नहीं रही। सॉरी, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्र को वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसके पक्ष के लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षाग्रह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का शीर हरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नंगी करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन का दल उन्हें नंगी होते ना देख सका। उसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के बाद महान कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली महारथियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान को कुरुवंश की एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंघुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दी श्रीगुरुं दीनतारणं। हमारा सौभाग्य है कि हम सब कुं कुंती की प्रार्थनाओं को पढ़ने का भगवान ने हमें अवसर प्राप्त कराया है। और ये अत्यंत ही सुंदर कांड है, ये अत्यंत ही सुंदर प्रार्थनाएं और अत्यंत ही सुंदर भाव है। एक जितने भी शास्त्र हैं उनमें जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना में बहुत ही विलक्षण प्रार्थना भगवान से की है जो हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट से हमने जो प्रार्थना के श्लोक पढ़े हैं उनको एक बार से फिर रिपीट करेंगे। श्लोक नंबर 18 से कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परं अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदेश्या नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुत्थाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात्। त्वयैव नाथेव नाथेन मुहुर्विपत्कणात्। यहाँ पर एक अत्यंत ही सुंदर बात कुंती महारानी भगवान को बता रही हैं कि भगवान आप अपनी जननी देवकी से भी अधिक मुझ पर सदैव कृपालु रहे हैं, सदैव मुझसे आपने बहुत स्नेह किया है, क्योंकि आपकी माता देवकी को एक बार कष्ट हुआ और यानी कि उनको क्या हुआ था, सुचार पिता कंटिन्यूअस रुद्धाति चिरम, और उसी कष्ट में उसको पूरा जीवन तक आप वहीं पर जेल में ही रही, वो है ना कारागृह में उसको डाला गया और पूरा जीवन उन्होंने उसी कारागृह में ही बिताया। भगवान इस संसार में आ गए परंतु फिर भी भगवान तो गोकुल चले गए और उनकी माता फिर भी कई वर्षों तक उसी जेल में रही, कारागृह में। परंतु कुंती महारानी कहती है, मुझ पर तो आपका कितना अनुग्रह रहा, मैं भले ही मुझे बहुत सारे कष्ट मिले परंतु कंटिन्यूअस कोई भी कष्ट निरंतर नहीं रहा मेरा। आप जब भी मेरे ऊपर कष्ट आता फौरन से आ जाते और तत्क्षण मेरे उस कष्ट का निवारण कर देते, फिर कष्ट आता फौरन उस कष्ट का निवारण कर लेते। आप तो मुझे अपनी माता से भी अधिक स्नेह करते। और यही यहाँ पर कुंती महारानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रियलाइजेशन के विषय में हमें बता रही है। कुंती महारानी हमें बता रही है कि जैसे इस संसार में क्या होता है, इस भौतिक जगत में आपके जितने भी प्रेमी हैं उनको क्या लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो मुझसे इतना स्नेह नहीं करता, उससे बहुत ज्यादा स्नेह करता है, दूसरों से ज्यादा स्नेह करता है। भले ही आप उसके लिए मर भी जाओ ना, उसके लिए हर उसकी इच्छा पूरी करो, हर उसके लिए कार्य करो, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में लगता यही है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता। इवन बच्चे जिनके लिए माता पिता जान लेने के लिए भी तैयार होते ना, फिर भी बच्चों में ये माता मेरे से प्रेम नहीं करती, ये पिताजी मेरे से प्रेम नहीं करते दूसरे भाई से। अरे तुम्हारे लिए वो जी रहे हैं। एक पति है, वो सुबह से लेकर रात तक वो काम कर रहा होता है, ऑफिस में जा रहा होता है, शॉप में जा रहा होता है, फिर भी पत्नी की यही शिकायत होती कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। हर किसी को प्रेम ही होता है ना, जो उससे भी यही, आपने मुझे विश नहीं किया, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आपने मुझे ये नहीं लाके, मतलब लगता ऐसा है, दिल से ऐसा लगता है कि वो मेरे से प्रेम नहीं करता, मुझसे स्नेह नहीं करता, या बस हमेशा एक दूसरे से कंप्लेन रहती है। ये भौतिक जगत की बात है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस संसार में कोई किसी से इतना कितना भी प्रेम करे, वो जो प्रेम होता है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस संसार, ये जो संसार है ना, उसमें हमें हमेशा स्वार्थ दिखता है ना, ये संसार स्वार्थ पर टिका हुआ है। और जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन आध्यात्म जगत में क्या होता है, हर एक भक्त को यही लगता है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं। दूसरों से सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा कृपा भगवान मुझ पे कर रहे हैं। तो यही बात को यहाँ पर कुंती महारानी दर्शाते हुए आगे कहती हैं कि मुझे और मेरे बच्चों के जीवन में अनेक अनेक विपदाएं आई, लगातार विपत्तियों का सामना करना पड़ा, और उन समस्त विपत्तियों में आपने हमारी रक्षा की। तो यहाँ पर विपत्तियों को गिनाते हुए कुंती महारानी कहती हैं, विषान, विषान का मतलब है विष से। वास्तव में दुर्योधन इत्यादि जितने कौरव थे वो पांडव पुत्रों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, और उनमें भी विशेषकर भीम से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, क्योंकि भीम के अंदर बहुत ज्यादा बल था। तो एक बार उन्होंने ये योजना बनाई, दुर्योधन, दुशासन और उनके भाइयों ने, कि हम ऐसा करते हैं कि भीम को किसी तरह से मरवाते। असल में भीम का और दुर्योधन का शुरू से ही झगड़ा चलता था, और दुर्योधन इतना कुमती था कि वो सदैव उसको मार डालने की चेष्टा करता था। तो उसको एक बार बोला, क्योंकि भीम को खाना भोजन खाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो एक बार भीम को बोला, भीम ऐसा करते हैं, आज हम पिकनिक पे चलते हैं, वहां पर दरिया के किनारे पर बैठेंगे, पिकनिक करेंगे और वहां पर बहुत सारा भोजन खाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट हम भोजन बनाते हैं और वहां पर चल के खाएंगे। तो भीम को तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन अच्छे लगते थे ना, तो दुर्योधन की बात मान ली और फिर उनके साथ गया, और वहां पर दुर्योधन ने बहुत सारे भोजन बनवाए और भीम की जो प्लेट थी उसमें विष डलवा दिया कि ये विष है ना, ये खाएगा, कालकूट विष जो था वो उसको खिला दिया, उसके खाने में डाल दिया कि वो खाएगा तो मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब भीम ने वो भोजन खाया तो उसके मतलब उसी समय ही वो गिर गया, और सबने क्या समझा कि भीम मर गया और उन्होंने भाइयों ने जो दूसरे 100 भाई थे उन्होंने उठाकर इसको दरिया के अंदर डाल दिया, समुद्र था उसके अंदर डाल दिया और घर पे जाकर यही कहा कि भीम जो है हम समुद्र में नहा रहे थे लेकिन भीम डूब गया, डूबा नहीं था उसको फेंका था लेकिन फिर भी यही बोला कि हम समुद्र में किनारे किनारे पर नहा रहे थे, भीम आगे निकल गया और वो समुद्र के अंदर चला गया। अब सब लोग रोने लगे, धृतराष्ट्र और जितने भी थे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और सारे कुंती उसके दूसरे पांडव सब रो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, भीम जब समुद्र के अंदर गया तो समुद्र में अंदर नागलोक था, नागलोक के जो नागों ने देखा एक प्राणी आ रहा है तो उसको जोर जोर से डसना शुरू किया। अब ऐसा कहा जाता है कि विष का जो काटने के लिए विष की आवश्यकता पड़ती, अब जैसे ही जहरीले सांपों ने भीम को काटा तो उसके जिस्म में जो विष था वो सब निकल गया और भीम जब विष निकल गया तो भीम को इतना क्रोध आया तो वो उन्हीं नागों को पकड़ पकड़ के मारने लगा, पकड़ पकड़ के ऐसे पटकने लगा, किसी को कैसे मारने लगा किसी को कैसे, क्योंकि भीम के अंदर कहा जाता है 20,000 हाथियों का उस समय बल था। तो ये सारे नाग जो थे वो गए अंदर और जो नाग लोग का राजा था उससे जाके कंप्लेन की और कहा एक इतना विचित्र प्राणी आया है, क्योंकि हम जब सांप किसी को डसते हैं तो उसको जहर चढ़ता है वो मर जाता है, लेकिन ये ऐसा विचित्र प्राणी उसको जैसे ही हमने डसा तो उसके अंदर और भी ज्यादा बल आ गया, वो और भी जी गया, पहले ऐसा लग रहा था मर रहा है लेकिन जैसे ही हमने इसको डंक मारा तो वो जी गया और वो हमारी ओर आ रहा है, हमें बहुत अनकष्ट दे रहा है, वो उसके अंदर बहुत सारा बल है। तो नागों के राजा ने कहा कि लेके आओ इसे कौन है, तो लेकर जब आया गया तो भीम ने परिचय कराया कि मैं पांडव का पुत्र हूँ और मेरा नाम भीम है। तो नागों के राजा के साथ ही भीम के नाना जी की नाना जी यानी कि भीम के नाना कुंती महारानी के पिताजी जो शूरसेन थे उनके नाना जी वो मित्र थे और वो उस समय अपने मित्र से मिलने के लिए आए थे और इतना प्रसन्न हुए भीम को देखकर, बोला ये तो मेरे नाती का नाती है, ये तो मेरा बच्चा है, कितना मतलब बहुत ज्यादा प्यार आया, इतने ज्यादा करीब का रिश्ता और अचानक से ही समुद्र के अंदर मिला। तो अपने वो उसका मित्र था नागों का जो राजा था और उसको कहा कि अब मेरा नाती आया है इसका तो स्वागत करना चाहिए। तो नागों के राजा ने कहा हाँ मित्र तुम जैसा कहोगे वैसा ही स्वागत करेंगे तुम्हारे नाती के नाती का। तो बोला भीम को कि तुम्हें क्या चाहिए, बोला मुझे बहुत भूख लगी है मुझे कुछ खिलाओ। तो बोला हाँ हमारे यहाँ पर एक कुंड है और उस कुंड का यदि अमृत पियेंगे ना तो एक कुंड के अमृत को पीने से आपको 1,000 हाथियों का बल मिलेगा। तो भीम बहुत खुश हो गया और एक कुंड का अमृत पिया तो तृप्ति नहीं हुई भीम की और उस समय जब उसको देखा उनके नाना जी ने तो बोला और पीना है, बोला इससे तो मेरा कुछ नहीं हुआ मुझे तो और भी बहुत ज्यादा पीना है। तो एक कुंड का पिया, दूसरे कुंड का, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें कुंड, आठ कुंड का पानी अमृत जो है वो भीम गड़क गया, पूरे पीते गया पीते गया पीते गया और इस तरह से आठ कुंड का पानी अर्थात 80,000, क्षमा कीजिएगा, एक कुंड से 1,000 तो आठ कुंड से 8,000 हाथियों का फल उसे मिला। और पहले मैंने 20,000 बोला था ना, नहीं पहले उनके पास ना 2,000 हाथियों का बल था यानी 8 और 2, 10,000 हाथियों का बल भीमसेन के अंदर आ गया। अभी वो मारना चाहते थे उसको, अंदर समुद्र में भेजा, लेकिन कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि वहां से और भी ज्यादा बलवान होकर आया दस, और इतना सुंदर भीम का शरीर इतना सुंदर हो गया, उसके मुख में इतना तेज आ गया। और जब वापस से उनके नाना जी ने कहा कि अब क्या करना है, अब तो बोला भीम ने बोला अभी मेरा पेट भर गया है अब मुझे वापस से हस्तिनापुर जाना है तो आप मुझे समुद्र के बाहर छोड़ के आओ। तो नाना जी और नागों के देवता, नागों के जो वो थे राजा, वो उसको समुद्र के तट पर छोड़ के आ गए और भीम जब गया, सब लोग देखा, बहुत ज्यादा खुश हुए सब उसको देखकर। दुर्योधन और उसके भाई देखकर इतने हैरान हो गए कि यार इसको हमें मारा था, मार के इसको समुद्र के अंदर भेज दिया था, और ये बच के कैसे आ गए, इंसान है क्या है ये। फिर उसके बाद कुंती महारानी कहती है, विषान महाग्नि, विष से और महाअग्नि से दुर्योधन और उसके जितने भी भाई थे वो सदैव इन समस्त पांडवों को मारने की चेष्टा करते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, एक ऐसा भवन बनाया जो ऐसे मटेरियल से मिलकर बना हुआ था जिसमें अगर खाली एक चिंगारी भी आग की लगती तो पूरा भवन जो है वो धधक कर भस्म हो जाता। इतना ज्यादा उसके अंदर लाख ग्रह, एक लाख कहना ऐसा मटेरियल था, उसको लाक्षाग्रह कहते हैं, तो उसको ऐसे मटेरियल से बनाया था कि वो फौरन से भस्म हो जाता था। तो फिर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, अब वो दूसरे गांव में था क्योंकि हस्तिनापुर के राजा थे, तो जितने भी अलग अलग जितने भी आगे पीछे के सिटीज थे वो सारे इनके कंट्रोल में थे। तो एक बार धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने कहा कि इनको उधर भेज दो। तो धृतराष्ट्र ने कहा युधिष्ठिर से कि क्योंकि आप दोनों में सब भाई एक साथ रहते हैं तो अक्सर झगड़ा होता है, तुम कुछ दिन के लिए वहां पर जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा राजभवन बनवाया है, वहां पर कुंती महारानी को ले जाओ और सुख से बैठो, ये थोड़े दिन आप लोग इससे दूर रहोगे ना दुर्योधन से, तो फिर है ना आप प्रेम आएगा, जैसे हम भी बोलते हैं ना भाई, एक साथ भाई बहन होते हैं फिर अलग चले जाते हैं, थोड़ा दूर दूर रहने से प्रेम बढ़ता है, तो आप कुछ दिन के लिए दूर रहने के लिए चले जाओ। और युधिष्ठिर महाराज स्वभावतः बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थे, महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उस लाक्षाग्रह में रहने के लिए चले गए। लेकिन जब वो जा रहे थे तब विदुर जी ने उन्हें एक संकेत किया, और महाभारत में घटना आती है और लिखा है कि मलेच्छ भाषा में उसने बात की, मलेच्छ भाषा, मलेच्छ का मतलब क्या होता है, मलेच्छों की भाषा यानी उनकी लैंग्वेज में, अब पता नहीं इंग्लिश में बोला होगा या फारसी में बोला होगा, बहरहाल बोला क्या कि युधिष्ठिर तुम्हें पता है कि जंगल में जब आग लगती है तो वहां से कौन सुरक्षित रह सकता है, आप जानते हो। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान हो गए और सोच के जवाब दिया कि जंगल में यदि आग लग जाए तो वहां से केवल चूहा ही सुरक्षित गुजर सकता है, क्योंकि चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है, और बिल के अंदर तो आग जाती नहीं है। तो बोला हाँ ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो तुम बचे रहोगे, ऐसा मतलब और कोई लैंग्वेज में बोला और किसी ने समझा नहीं, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे उनको बात समझ में आई थोड़ी बहुत, और वहां पर गए तो थोड़ी देर के बाद एक खनक जो खोदता है ना वो आया और उसके हाथ में चूहा था, तो बोला मुझे विदुर महाराज ने भेजा। सिर्फ पूरी सभा में केवल एक विदुर महाराज ऐसे थे जो कि विदुर जी ही ना कुंती और उनके पुत्रों की रक्षा, भगवान ने उनको स्पेशल ये ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपको समस्त योजनाओं के ऊपर दृष्टि रखनी है, जो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो योजना करेंगे उनके ऊपर दृष्टि रखना कि कहीं वो इनको हानि न पहुंचाए। तो फिर विदुर जी ने एक खनक को भेजा और वो अंदर गया और उसने एक सुरंग बनाई उसी भवन में, और उन्होंने क्या किया था, धृतराष्ट्र ने इनके नौकर भी रखे थे वहां पर क्योंकि इतना ज्यादा राजभवन था, और नौकरों में भी क्या था, एक स्त्री थी और उसके पांच पुत्र थे, वो इनके साथ सेवा करते थे, और उनको ये आज्ञा दी गई थी कि समय पाकर इस भवन में आग लगा देना, और जैसे ही आग लग जाएगी तो आप लोग चले जाना ताकि ये सब मर जाएंगे। तो फिर वो ऐसा ही रोजाना सोचते थे कि आज आग लगाएंगे आज लगाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, वो जब भी रात होती थी तो एक उनमें से भाई को ये आदेश था कि एक जागता रहेगा। अब जब तक वो जागता रहता था तो उनको समय नहीं मिलता था कि वो कैसे है ना आग लगाए, तो इसी तरह से वो करते। तो एक बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा वो जो इस ड्यूटी पर रखे गए थे ना एक स्त्री और उसके पांच पुत्र, वो ज्यादा बहुत टेंशन में आ गए कि इतने दिनों से ये लोग तो सोते ही नहीं, हमें चांस ही नहीं मिल रहा आग लगाने का, तो बहुत ज्यादा दुखी होकर वो शराब पीने लगे, और शराब पीकर वहीं पर वो सब सो गए, और जब वो सब सो गए तो उनकी सुरंग जो अंदर विदुर जी ने भेजा था ना, खाना को तैयार कर रहा था, वहां सुरंग तैयार हो गई। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि क्योंकि ये भवन में आज नहीं तो कल आग लगेगी ही लगेगी। उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी सोया हुआ है। वो लोग क्या करते थे, रात को बोलते थे अभी हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर रहते थे कहीं पर कोने में, ताकि जब मौका मिलेगा तो आग लगा देंगे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि दुर्योधन आज नहीं तो कल इसमें आग लगाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही से इसमें आग लगा देते हैं और हम निकल जाते हैं। क्यों खाम खा बार बार है ना इनके कष्टों को सहना, हम लोग कोई और जगह पर चले जाते हैं। तो जब वो जा रहे थे सारे भाई उस सुरंग से, एक जो सुरंग खुदी थी जो बाहर की तरफ रास्ता था, बिल्कुल दूसरे सिटी की तरफ रास्ता जा रहा था, और यहाँ पर आग लगा दी। आग लगा दी तो संयोग से वो जो एक स्त्री और उसके पांच पुत्र जो थे वो भी इसके साथ जल गए। अब जब सुबह हुई और सबने जब देखा तो उनको लाशें भी मिली वहां पर, शव मिले पांच पुत्रों के और एक उस स्त्री के, तो सबको ये विश्वास हो गया कि पांचों पांडव महारानी कुंती के साथ जलकर भस्म हो गए। लेकिन भगवान ने वहां पर भी उनकी रक्षा की और सब लोगों को जब पता चला, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इवन धृतराष्ट्र भी, सब लोग शोक सभा लगाई, सब लोग रो रहे थे। और द्वारिका भी संदेश पहुंचा गया, क्योंकि कृष्ण की बुआ थी तो कृष्ण और बलराम भैया भी आए और वो भी रो रहे थे। कृष्ण हालांकि विदुर जी भी रो रहे थे लेकिन ऊपर ऊपर से रो रहे थे, अब जाहिर सी बात है पता तो नहीं था। और कृष्ण को तो सब पता था कि ना क्या हो, मैंने जरूर कृष्ण की कृपा से वो सब बच गए थे, लेकिन फिर भी कृष्णा भी रो रहे थे, गुण याद कर करके रो रहे थे और बोल रहे थे कुंती बुआ मैं अंतिम समय में आपसे मिल भी नहीं सका। और अर्जुन को याद करके बोल रहे थे मित्र तुम एक बार मुझे बुलाते तो सही, मतलब सब मैं तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। कृष्णा विलाप कर रहे थे और सब लोग कृष्णा को देख कर और भी ज्यादा रो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो दूसरे सुरंग से दूसरे साइड पर निकले तो वहां पर एक दूसरे गांव में पहुंचे और उस गांव का नाम था एक चक्रा नगरी में। और एक चक्रा नगरी में जब वो पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ कि एक राक्षस था, वो नरभक्षी राक्षस, यानी कि वो जो भी नर है ना उनको खाता, मनुष्यों को खाता था, और जब खा के चला जाता था, जब भी आता था इस गांव में किसी के घर पे जाके किसी को खा के चला जाता था। तो वहां के जो पंच थे उन्होंने एक मीटिंग रखी और उस राक्षस को भी बुलाया और कहा कि देखो इस तरह से आप आके किसी को भी खा के चले जाते हो, बहुत उत्पात होता है, ऐसा नहीं करना। आप क्या करेंगे, हम हर प्रति महीने ऐसा करेंगे, एक बहुत बड़ा छकड़ा भरकर भोजन का और एक मनुष्य को आपके यहाँ पर भेजेंगे, सबके घर में, हर एक घर की बारी आएगी, आपके घर पे भेज दिया जाएगा आपको भोजन, आप हमारे गांव में आकर यूं उत्पात खड़ा नहीं कीजिएगा। तो उसने राक्षस ने कहा कि ठीक है मुझे तो भोजन से ही काम है ना, तो अगर आप भोजन भेज दोगे और एक व्यक्ति को भेज दोगे तो मुझे है ना इससे कोई आपत्ति नहीं, मैं तुम लोगों के गाँव में आकर किसी को भी मारूंगा नहीं। तो इस तरह करते करते हर एक घर की बारी होती थी, आती थी। अब आज जिसकी बारी थी वहां पर, जहां पर कुंती महारानी अपने पांचों पुत्रों के साथ शरण प्राप्त किया था, यानी कि अभी वो जैसे सुरंग से निकले थे तो एक गांव में आए थे, तो ब्राह्मण का रूप धारण करके वो उसके उस ब्राह्मण के घर पे ही रह रहे थे और वहां पर आज उस घर की बारी थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं जाऊंगा शकड़ा लेकर। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं आप मेरे पति हैं और मैं कभी भी ये नहीं देख सकती कि मेरे होते हुए आप पर कोई आंच आए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा, नहीं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं जाऊंगी। तो उसके पति ने कहा कि जब विवाह होता है तो पति अपनी पत्नी की रक्षा करने का भार उठाता है, मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ। इतने में उसके पुत्र ने सुन लिया, बोला बाबा आप क्या सोचते हो, मैं पुत्र हूँ और आप दोनों पर यूं विपत्ति आते हुए देख सकूंगा, नहीं मैं जाऊंगा, मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगा। तो इतना सुनकर उसकी एक बेटी भी थी और वो कहने लगी नहीं भैया, क्योंकि मेरे माता और पिता का आप ही एक सहारा हो, तो मैं तो वैसे भी कन्या हूँ, आज नहीं तो कल, मुझे तो वैसे ही इनको विदा करना है, तो मैं जाऊंगी झगड़ा लेकर। इस तरह से सब लड़ाई कर रहे थे, वो बोल रहे थे मैं जाऊंगा, वो बोल रहे थे मैं जाऊंगा, और रो रहे थे जोर जोर से। तो कुंती महारानी जो कि दूसरे कमरे में थी, वो वहां पर आई और कहने लगी, आप हमें बताएंगे कि क्या विपत्ति है और कहाँ जाने की बात हो रही है? तब उन्होंने कहा, सारी बात बताई कि राक्षस एक, हमारे यहाँ पर रूल है कि एक बंदा छकड़ा लेकर जाता है और उस वहां के पति ने, उस वहां पर जो घर का मालिक था, उसने कहा मैं जाऊंगा, जाहिर सी बात है स्वभाव था, मुझे ही जाना चाहिए। तो कुंती महारानी ने कहा, आप ये क्यों भूल गए कि इस घर में मैं और मेरे 5 पुत्र भी रहते हैं। अब जब इस घर की बारी है तो इस घर के कष्ट, जब सुख हमें इस घर में प्राप्त हो रहा है तो इस घर का दुख भी तो हमारा ही है ना, तो आप नहीं जाओगे, हमारा, मैं अपने पुत्र को भेजूंगी, मेरा पुत्र जाएगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आप हमारे अतिथि हो, हम आपको कैसे भेज सकते हैं? तब कुंती महारानी ने कहा कि नहीं, आपने विपत्ति के समय हमें सहारा दिया है, और दूसरा ये कि आपके तो एक ही बेटा है, मेरे तो 4 बेटे हैं, उनमें से यदि एक चला भी जाएगा तो भी मेरे पास, मेरे 5 बेटे हैं तो भी मेरे पास 4 तो बचेंगे, तो आप फिक्र नहीं करो, मैं ही अपने पुत्र को भेजूंगी। तो इस तरह से कहकर वो अपने पुत्रों के पास गई और सोचने लगी कौन जाएगा। युधिष्ठिर भैया ने कहा कि डेफिनेटली मैं ही जाऊंगा, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं लेकर जाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा, नहीं बड़े भैया, आप हमारे राजा हो, हम आपको कैसे भेज सकते हैं इतनी विपत्ति में, मैं जाऊंगा। तो भीम ने कहा, आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं जब भी खाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा भोजन मुझे मिलता है, और जब विपत्ति की बात आ रही है तो मुझे पीछे भेज दिया, पीछे कर दिया जा रहा है, विपत्ति में भी मुझे पहले भेजो ना। तो सब वो उसमें भी ये लड़ाई हो रही थी, वो बोल रहा था मैं जाऊंगा, वो बोल रहा था मैं जाऊंगा। तभी भीम ने कहा, आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि यदि मैं जाऊंगा तो वो राक्षस मुझे खा जाएगा? कि आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तुम लोगों को क्यों नहीं लगता कि मैं उसको मार डालूंगा? तो सब हंसने लगे और सबको पता, मतलब सबको यकीन था कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्ण हमारे साथ हैं, और भीम भैया के पास बहुत ज्यादा बल था, और भीम भैया ने बहुत सारा सामान उसको छकड़ा भर के, पूरा समझो एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर भर के उनको भोजन का दिया गया, और वो लेकर गए वहां पर जहाँ पर वो राक्षस था। अभी लेकर जा रहे थे तो रास्ते से इतना सिलो जा रहे थे, वो बैलगाड़ी में रखा था, उस बैलगाड़ी को बहुत आराम आराम से, क्यों आराम से चला रहे थे कि जितने वो भीम भैया की क्या आदत थी कि वो है ना भोजन को देख ही नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता था, खाने में उनकी बहुत रुचि थी, तो रास्ते में बार बार खा रहे थे, बोला थोड़ा खा लूंगा, उसको क्या खबर पड़ेगी कि मैंने खा लिया, फिर थोड़ा खाते थे, फिर थोड़ा खाते थे। अभी थोड़ा 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 करके जब वो उस राक्षस की गुफा तक पहुंचा, तब देखा पीछे चकड़े में एक भी कोई भी चीज नहीं रखी हुई थी, सब कुछ भीम भैया ने खा लिया था। और राक्षस देख रहा था इतना ज्यादा गुस्से में, पूरा लाल हो गया कि इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, गुस्सा कर रहा था कि मैं सारे गांव को खा जाऊंगा, ये करूंगा वो तो बाहर आके देखा तो भीम खड़ा था, और देखा कि उसके सारे भोजन को भीम ने तहस नहस कर दिया, बोला ये मनुष्य है क्या है, इसने इतना सारा भोजन कैसे खाया? और फिर उसको बहुत ज्यादा भीम को मारने लगा, लेकिन भीम भैया के पास भी बहुत ज्यादा बल था, और उसने इस राक्षस का सर्वनाश कर दिया, मार डाला उसको। तो कुंती महारानी भगवान को कह रही थी कि ये सारा बल आपका दिया हुआ है, ये सारी बुद्धि जिससे मेरे बच्चे आज तक बचे, वो सब बुद्धि आपने दी है, और जब जब विपत्ति आई है उस पर आपने ही हमारी रक्षा की है। कुंती महारानी आगे कहती हैं, विशन महात्म्य पुरुषाद दर्शना असत सभाया। फिर क्या हुआ कि जब सबको पता चल गया कि भीम ने इस राक्षस को मार डाला, तो सब में विख्यात हो गए कि ये बहुत ज्यादा बलवान है ये है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब सबको जब पता चल जाएगा तो फिर हस्तिनापुर में भी खबर चली जाएगी कि यहाँ पर ही हम लोग ठहरे हुए हैं, तो आराम से वहाँ उस गांव को छोड़कर निकल गए और फिर वो पंजाब की साइड पर चले गए जहाँ पर के द्रुपद महाराज का की राजधानी थी। और वहाँ पर द्रुपद महाराज के राज्य में अब द्रौपदी क्योंकि विवाह योग्य हो गई थी तो उसका स्वयंवर रचा हुआ था। स्वयंवर में द्रुपद महाराज ने ये शर्त रखी थी कि नीचे एक तेल का तालाब बनाया था और ऊपर जो सीलिंग होती ना यहाँ पर रूफ में एक मछली थी जो तेज तेज घूम रही थी। अब करना था क्या कि एक बहुत बड़ा धनुष बाण था उसमें उठाकर नीचे देखना था तालाब में और ऊपर मछली की आंख में तीर लगाना था। अब सब लोग बहुत सारे लोग आए थे वहां पर, दुर्योधन भी आया था, उसके दूसरे भाई भी आए थे, करण भी आया था और ना द्वारिका से कृष्ण और बलराम वो लोग इससे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए थे क्योंकि द्रौपद महाराज बहुत बड़े राजा थे तो दूसरे राज्य के लोगों को और कृष्णा की मित्रता थी द्रौपदी के साथ, मतलब सखी कहते थे तो उनको भी बुलाया था तो देखने के लिए आए थे कि कैसी होती है सभा, कैसे क्या होता है वहां पर। सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, दुर्योधन ने, दुशासन ने, बहुत से लोगों ने तो धनुष बाण उठा ही नहीं सका जैसे सीता मैया का हो रहा था ना स्वयंवर, कोई उठा ही नहीं, बहुत सारे लोग तो उठा ही नहीं सके, बहुत सारे लोग पतिन जो चढ़ाते ना वो नहीं चढ़ा सके। और यहाँ पर लिखा हुआ महाभारत में कितने सारे लोग तो वहां पर घायल हो गए, कितने सारे तो हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको। और ऐसे करते करते दुर्योधन भी नहीं उठा सका, दुशासन भी नहीं उठा सका और उसके बाद करण की बारी आई। करण जब उठा उसने धनुष बाण उठा लिया, उठाया तो कृष्णा ने द्रौपदी ने कृष्णा की ओर देखा कि क्या ये है, इससे मुझे विवाह करना है। तो कृष्णा ने फिंगर से कहा नहीं, मना कर दो, इससे नहीं करना तुमको। तो फिर द्रौपदी जो है वो खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये पहले से है ना ऐलान कर दिया गया था, पहले से ही घोषित किया गया था कि ये सभा केवल राजपुत्रों और ब्राह्मणों के लिए है, यहाँ पर सूत पुत्रों के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि शूद्र था। अब द्रौपदी को ये नहीं पता था कि करण जो है वो महारानी कुंती का पुत्र है, ये पहले बात अभी तक विख्यात नहीं थी। तो द्रौपदी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि शूद्र के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, तो आप में इसको ये परमिशन है, ये उसका अधिकार था, एक कन्या का अधिकार होता है वो किसके साथ विवाह करना चाहती है, किसका नहीं, किसके साथ नहीं करना चाहती है। तो उसने मना कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तो कर्ण चला गया और कर्ण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अपनी वो इंसल्ट, ये उसके साथ जो इंसल्ट हुई थी ना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और उसके बाद जब सारे लोग हार गए तो बोला कि अब ब्राह्मण जो लोग आए हैं वो भी ट्राई करें। और अर्जुन उठे वहां से, गांडीव धनुषधारी, वो फौरन से उठे और फौरन से तेल में देखा नीचे और मछली की आंख को निशाना बनाया, सबने जय जयकार किया और वहां पर द्रौपदी ने आकर अर्जुन को वरमाला पहनाई। लेकिन सारे जितने क्षत्रिय थे वो सब अभी और भी ज्यादा उठकर खड़े हो गए, बोला एक इतनी राजकन्या जो है जो इतने वैभव के साथ पली हुई है वो एक राजा के वो ब्राह्मण भिखारी के साथ कैसे जा सकती है, हम इस ब्राह्मण को इस राजकन्या को लेकर जाने के लिए नहीं देंगे। तो लगे लड़ाई करने, पहले तो हार गए थे सारे, लेकिन ऐसा होता है कि जब ऐसा वक्त आता है तो सारे कायर बोलना शुरू कर देते हैं और सब बोलने शुरू कर दिए कि भाई इस ब्राह्मण को लेकर जाने नहीं देंगे। तो फिर वहां पर ही थोड़ा छोटा मोटा युद्ध शुरू हो गया, भीम तो सारे वहां पर स्तंभ लगे हुए थे उठा उठा के सबको मारना शुरू कर दिए। तो सब ऐसे ही लड़ाई हो रही थी छोटी छोटी और है ना सबको पता चल गया कि ये सब कौन है, ये सब पांडव ही हैं। और इस तरह से बहुत ज्यादा सब बहुत ज्यादा द्रुपद महाराज बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी की शादी अर्जुन के साथ हुई, ये जानकर उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। चारों पांडव जो हैं वो अपनी माता के, अभी माता कुंती नहीं आई थी उस सभा में, वो घर पे ही बैठी हुई थी भोजन बना रही थी। और जब वो आए, क्योंकि वो ब्राह्मण की तरह रह रहे थे तो रोजाना कहीं ना कहीं से भिक्षा मांग कर आते थे या कुछ लेकर आते थे और कुंती महारानी को देते थे कि भाई आज हमें ये भिक्षा मिली है। तो कुंती महारानी रोज कहती थी कि पांचों भाई आपस में बांट कर इसको खा लो। तो आज भी ऐसे ही बोला। बाहर से ही दरवाजा अभी तक बंद था और बाहर से ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा, माताजी आज हम बहुत सुंदर भिक्षा लेकर आए हैं आपके लिए। तब कहना ये चाहते थे कि अभी हम बहू लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने बस ऐसी स्वभावता ऐसी आदत हो गई थी तो ऐसे ही बोला। तो कुंती महारानी ने भी बगैर देखे बोल दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा सुना तो वो परेशान हो गए और अंदर आके बोला, माता हम तो मैं तो इस कुलवधू की बात कर रहा था, अब इसको हम कैसे बांट सकते हैं। तब कुंती महारानी ने कहा, अब मेरे मुख से तो ये वचन निकल गए हैं, अब बांट को बांट के दिखाओ, इसको बांटो। तो बहुत ज्यादा सब परेशान हो गए और वहीं पर वेद व्यास जी आए और उन्होंने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, यही विधि का विधान है। द्रौपदी इन पांचों पांडवों के साथ ही इसका विवाह होगा। और वहीं पर कृष्णा भी आए और सबको समझाया कि अब इसी तरह से द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह होगा और वो परम सती कहलाएंगी। इतना कहने के बाद फिर जब धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडवों का विवाह जो है वो द्रौपदी की कन्या द्रौपदी के साथ हुआ है, तो फौरन उनको बुलाया वहां पर, क्योंकि द्रौपदी की सेना जो थी वो बहुत ज्यादा बलवान थी और धृतराष्ट्र को पता था कि यदि द्रौपदी की कन्या वहां पर जंगल में रहेगी तो द्रौपदी तो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा कि भाई आप लोगों ने पांडवों को क्यों निकाला। तो जाके बुलाया उनको, बोला हमें पता नहीं था आप लाक्षाग्रह में, हमने समझा आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप जिंदा हो तो आप आओ। तो फिर उनको बहुत ही आदर के साथ बुलाया गया और वहां पर जाकर उनको आधा राज्य भी दे दिया। आधा राज्य समझो कैसे दिया, खांडव परस्त दे दिया, बोला हस्तिनापुर हम रखते हैं, खांडव परस्त जो बिल्कुल बंजर था, नागों की जमीन थी, वहां पर दे दिया। लेकिन क्योंकि महाराजा युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के साथ ही राज्य करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई अपने राज्य की और खांडव परस्त थे उसे इंद्र परस्त बना दिया। बहुत ही सुंदर राजभवन वहां पर बनाया, राजसूय यज्ञ किए और बहुत सारे राजाओं को जीता, अर्जुन को अलग अलग देशों में भेजा गया, वहां से बहुत ज्यादा धन संपत्ति मिली उनको और बहुत ही वैभवशाली उनका राज्य हुआ। लेकिन ये जब उनकी सुख संपत्ति देखी ना उन्होंने दुर्योधन इत्यादि ने, तो उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इन पांडवों से ये राज्य भी ले लेना चाहिए, कोई ऐसा तरीका करें। अब लड़ाई तो उनके साथ कर नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया, द्यूत क्रीड़ा रजाई। द्यूत क्रीड़ा यहाँ पर असत सभायाम जो लिखा है ना द्रौपदी कुंती महारानी ने क्या कहा है, विशान महात्म्य पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया। असत सभा यानी दुष्टों की सभा, यानी कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब दुष्ट थे। दुष्ट यानी कि वहां पर एक स्त्री का चीर हरण होने वाला था, उसको नग्न करने की चेष्टा की जा रही थी और वहां पर सारे दुष्ट लोग बैठे हुए थे आंखें खोलकर वो दृश्य देखने के लिए। एक भी वहां से उठकर वो अगर उनके साथ विरोध नहीं कर सकता था तो कम से कम अपना मुंह लेकर वहां से चला तो जाता, लेकिन सब वहां पर ही बैठे रहे और ऐसा कि कोई मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। तो यहाँ पर असत सभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उस समय क्या हुआ, द्यूत क्रीड़ा हुई और युधिष्ठिर महाराज ने एक एक करके अपने सारे भाइयों को, अपने राज्य को और अंत में द्रौपदी को भी हार गए जुआ से। और वो उस समय रजस्वला अवस्था में घर में ही बैठी थी, लेकिन दुशासन को बोला गया कि जाओ तुम और जाकर उसको बालों से पकड़ के लेके आओ, जाओ लेकर आओ। ऐसे कहा, पहले उसको भेजा गया, एक नौकर को भेजा गया कि तुम अभी तुम्हें हार गए हैं तुम्हारे पति, तो तुम आओ सभा में। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जाके पूछो क्या ये वास्तव में धर्म है कि कुलवधू उस सभा में आए जहां पर केवल पुरुष हैं, जाके बताओ, जब तक इसका उत्तर नहीं लेकर आओगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। तो जाकर वहां पर जब ये प्रश्न किया तब कर्ण बोला, कर्ण ने कहा कि तुम तो क्योंकि पांच पत्तियों के साथ रहती हो तो तुम तो एक वेश्या हो और वेश्या का मान क्या, सम्मान क्या। कारण वास्तव में इसलिए बोला था क्योंकि द्रौपदी ने उस समय उसको ये कहा था कि सूत पुत्र के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। अब द्रौपदी ने जब कहा था उससे नहीं पता था कि ये सूत पुत्र नहीं है, ये सूर्य पुत्र है, लेकिन कारण जानता था कि द्रौपदी महासती है और उसके बावजूद भी उसने उसको बोला, तो ये बहुत बड़ा अपराध किया। और जब भगवान युद्ध में अर्जुन को ऐसे ही बोल रहे थे कि ये वही कारण, अब कारण क्या कर रहा था, युद्ध के टाइम पर जब उसका रथ जो है वो धरती के अंदर धस गया तो वो रथ निकाल रहा था, तब भगवान अर्जुन को कह रहे थे मारो मारो इस दुष्ट को मारो, तब कारण बोल रहा था ये तो युद्ध नीति के नियम के खिलाफ है, ये तो अधर्म है, मैं अभी युद्ध नहीं कर रहा हूँ तो तुम लोग मुझ पर हथियार कैसे चला सकते हो। तब अर्जुन को भगवान ने कहा था ये धर्म की शिक्षा दे रहा है तुमको, ये वही है ना जो कुल वधु को वेश्या कह रहा था। उस समय इसको धर्म का भान नहीं था, उस समय इसको पता नहीं था कि धर्म किसको कहा जाता है अधर्म किसको कहा जाता है, आज इसको धर्म याद आ रहा है मारो इसको मारो, तो भगवान याद करा रहे थे उसको। लेकिन वहां पर भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन बालों से पकड़ कर लेकर आया और बहुत अत्याचार, द्रौपदी एक एक के पास जाकर पूछ रही थी, पितामह भीष्म को बोला, धृतराष्ट्र को बोला, द्रोणाचार्य को बोला कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या स्त्री कोई संपत्ति होती है कि वो मुझे जुआ में हार के, और यदि वो उसकी संपत्ति होती है तो पहले ही तो उसने अपने आप को हार दिया, उसके साथ मुझे भी हार गए, फिर मुझे हारने की मुझे दोबारा से दावा पे कैसे लगाया उसने, बहुत सारे प्रश्न उस समय किए, लेकिन किसी ने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला, सब चुप करके बैठे हुए थे। और जब अंत समय में भीष्म पितामह शांति पर्व में, जब महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे लेटे धर्म का उपदेश दे रहे थे ना, तब द्रौपदी ने एक प्रश्न किया था पितामह भीष्म से कि आज तो धर्म के लिए तुम इतना वेग से प्रवचन कर रहे हो, कंटिन्यूस तुम्हारा प्रवचन चल रहा है, उस समय तुम्हारा ये धर्म का प्रवचन कहाँ गया था जब मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही थी बड़ी सभा में। तब भीष्म पितामह ने कहा बेटी उस समय क्योंकि मैंने अन्यायी दुर्योधन का अनाज खाया था, दुष्ट दुर्योधन का अनाज मेरी रगों में था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सका। तो यहाँ पर यह शिक्षा मिल रही हमें कि बगैर सोचे समझे किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने किसी भाव से, जितना दुष्टता होती है उसके अंदर, और जब हम किसी ऐसे जीव का अनाज खाते हैं उसके साथ रह के खाते हैं तो हमारी मति जो है वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाती है। तो हमें हमेशा सात्विक भोजन जो कि घर पे बनता है भगवान को प्रसाद अर्पण करके उसी का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को अपनी समस्त विपत्तियों के विषय में बता रही है कि उस असत सभा में जब कोई नहीं बोला तब केवल आप ही आए थे मेरी कुल वधु की रक्षा करने के लिए, हमारे मेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए। और उस समय भगवान ने अत्यंत ही सुंदर रीति से द्रौपदी की रक्षा की, साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि वो खींचते गए दुशासन हार गया, गिर गया, और फिर भी द्रौपदी की साड़ी इतनी बड़ी बढ़ गई कि उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। तब महारानी गांधारी वहां पर आई और अपने पुत्रों को बहुत ज्यादा मतलब कहा कि ये सब तुम लोगों ने कैसे किया, बहुत ज्यादा उनको धिक्कारा। और फिर कुंती महारानी ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो वरदान में देने के लिए तैयार हो, जो वरदान तुम चाहो, तुम खाली मेरे पुत्रों को श्राप मत देना, तुम्हें जो चाहिए बोलो मुझे। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे पति जो मेरे ज्येष्ठ पति हैं युधिष्ठिर महाराज, उसको आप मुक्त कर दीजिए उनके शस्त्रों के साथ। तब गांधारी ने कहा कि हम उसको मुक्त कर देते हैं और कोई दूसरा वरदान मांगो। तब द्रौपदी ने बोला मुझे दूसरा वरदान दो, मेरे बाकी के चार पतियों को भी आप इस बंधन से, यानी कि जो अभी दासत्व से मुक्त कर दो उनके शस्त्रों के साथ। तब गांधारी ने कहा मुक्त कर दिया और वरदान मांगो। उस समय द्रौपदी ने कहा कि एक क्षत्रिय को दो से ज्यादा वरदान मांगने की परमिशन नहीं है। अब मेरे पति जो हैं, वो अपने शस्त्रों के साथ मुक्त हैं, अब जो करना होगा
वो सक्षम है, वो करके दिखाएंगे। उसी समय युद्ध हो जाता, परंतु धृतराष्ट्र ने उस समय कूटनीति से काम लिया और कहा कि जितना भी जो भी मेरे पुत्रों ने जीता है, जो राज्य जो कुछ भी जीता है, वो सारा का सारा हम उन्हें वापस देते हैं। और इतना सब देने के बाद वो सब चले गए, अभी तक पहुंचे ही नहीं थे। दुर्योधन ने अपने पिताजी को इतना डांटा, बोला आपको पता है कितनी मुश्किल से हम लोगों ने ये युद्ध किया, ये युद्ध कीड़ा का प्रोग्राम किया था और उसमें सब कुछ हम लोगों ने जीत लिया और आपने वापस से दे दिया। अब धृतराष्ट्र ने कहा अगर मैं नहीं देता तो यहीं पर तुम्हारा वध कर देते वो सब पांडव, तुम लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की थी। तो बोला अब क्या करना है कि वापस से उनको द्यूत का संदेश भेजो और हम वापस से करेंगे यहाँ पर जुआ। तो बोला अभी वो आएंगे नहीं। तो बोला क्षत्रियों को अगर नियोक्ता दिया जाता है ना युद्ध का या फिर द्यूत का जुआ का, तो वो मना नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र ने वापस से किसी को भेजा, संजय को भेजा कि जाकर उनको लेकर आओ। उनको जाके कहा कि भाई आपको ज्येष्ठ पिताश्री ने बुलाया है। वो सब वापस से आ गए और कहा अब वापस से द्यूत क्रीड़ा करेंगे। और वापस से द्यूत क्रीड़ा करने के लिए वो तैयार हुए और यहाँ पर पहले से ये बात नक्की हुई कि अब कोई किसी को दांव में नहीं लगाएगा। जो हारेगा वो 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाएगा। एक ही दांव में पांडवों को हरा दिया और उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं वनवास कृच्छ्रत के, पहले तो असत सभा में हमारी रक्षा की और उसके बाद वनवास में, जब वन में हम थे तब अनेक कष्ट आए थे। और वहां पर वन में भी एक बार भी क्या हुआ, दुर्योधन के पास दुर्वासा मुनि आए और उनकी बहुत ज्यादा सेवा की दुर्वासा मुनि की दुर्योधन ने, और कहा कि आप यदि वास्तव में संतुष्ट होना चाहते हो ना तो वहां पर युधिष्ठर महाराज के पास जाओ, वो तो इतना स्वादिष्ट भोजन, यानी कि उनको ये नहीं बताया कि ये जंगल में इनके पास कुछ है ही नहीं खाने, बोला आप अपने सारे शिष्यों के लेकर वहां पर जाइए और वहां पर वो बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, आप उधर जाइए उनके पास। जब वो दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेकर वहां पर गए युधिष्ठर महाराज के पास, उस समय द्रौपदी ने खाना खा लिया। अब उनके पास एक पत्तल था ऐसा अक्षय पात्र, जब तक द्रौपदी खाती नहीं थी तब तक जितने भी जीवों को प्रसाद खिलाते थे ना वो खत्म नहीं होता था, अक्षय पात्र उसको बोलते हैं। अब लेकिन जब द्रौपदी खा के उसको वॉश करके रख देती थी फिर उसके अंदर कुछ भी खाना नहीं बचता था। तो फिर सारे वहां पर गए, अब द्रौपदी ने भोजन खा लिया था, तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं और मेरे सारे शिष्य आज आपके यहाँ पर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जो आज्ञा, आप स्नान कर लीजिए और फिर हम तब तक भोजन की व्यवस्था करते हैं। दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य गए समुद्र में, मतलब वहां पर स्नान करने के लिए नदी में गए, तो द्रौपदी से युधिष्ठिर ने कहा तुमने भोजन कर लिया? तब पांचाली ने कहा कि हाँ मैंने तो भोजन कर लिया, अब तो कुछ भी नहीं है। तो इसी समय कृष्णा को याद किया, बोला भगवान अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई रक्षा नहीं करेगा, ये दुर्वासा मुनि तो ऐसे हैं कि जब उनको खिलाया जाता है ना तब भी श्राप दे देते हैं, आज अगर वो खाने के लिए आए हैं और उनको अगर भोजन नहीं मिला वो तो यहीं पर हमारी अग्नि समाधि करा देंगे। तो कृष्णा फौरन आगे वहां पर और कहा कि द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। तब द्रौपदी ने कहा आज पता नहीं क्यों सारे लोग खाने के लिए आ रहे हैं जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं खाने के लिए। तब कृष्ण ने कहा मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, मुझे वाकई में भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। तब द्रौपदी ने कहा सच कहती हूँ कृष्णा, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तब बोला कि वो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम अपनी देगरची दिखाओ, वो पात्र है ना अक्षय पात्र वो दिखा। तब कृष्णा ने द्रौपदी ने जब कृष्णा को दिखाई तो उसमें एक छोटा सा साग और चावल का दाना लगा हुआ था, सही तरह से धोया नहीं था, मतलब उसमें लगा हुआ था। और भगवान ने कहा इससे तो पूरे विश्व का पेट भर सकता है पांचाली। और भगवान ने उसको खाया और जैसे ही भगवान ने उसको मुंह में रखा, दुर्वासा मुनि और उसके जितने 10,000 शिष्य थे उनको इतना पेट भर गया, इतना पेट भर गया, भगवान ने खा के फौरन से डकार ली और उनका पेट जो है वो गर्दन से भी ऊपर तक भर गया। और फिर उन्होंने कहा सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि खाली मेरा पेट भरा है या उसका भी भरा है। वो बोले मेरा भर गया, वो मेरा मेरा भर गया, मैं तो अभी एक एक बाइट भी नहीं खा सकता। कोई बोलते मैं तो अभी खाना देखूंगा तो भी मुझे उल्टी आ जाएगी। सबका पेट इतना फुल भर गया। दुर्वासा मुनि ने कहा हाँ मेरा भी पेट बहुत भर गया है, अब अगर हम जाएंगे तो युधिष्ठिर महाराज ने तो 10,000 लोगों का खाना बनवाया होगा और इतना सारा भोजन अभी व्यस्त होगा तो कृष्णा जो है वो अवश्य बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाएंगे। पहले भी महाराज अम्बरीश के कारण मेरे पीछे सुदर्शन चक्र लगा दिया था और अभी भी अगर उनको पता चला कि हमारे कारण ये 10,000 लोगों का भोजन अभी हम खाएंगे तो नहीं वहां पर जाएंगे तो ऐसा करो कि अभी है ना वहां पर चलते ही नहीं। तो उन्होंने सारे शिष्यों ने बोला फिर हम क्या करें क्या। तो दुर्वासा मुनि ने कहा जिसको जिसको जिधर समझ में आता है भाग जाओ, एक साइड में नहीं भागना, क्योंकि एक साइड में जाओगे तो सुदर्शन चक्र आएगा और एक 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 की गर्दन कटती जाएगी। इसलिए जिधर जाना है भाग जाओ, लेकिन वहां पर नहीं जाना क्योंकि वहां पर तो आप जाओगे कुछ खाओगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने इतनी सारी व्यवस्था की होगी तो वो सब कोई उधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। तो कृष्णा ने ना युधिष्ठिर महाराज को कहा कि अभी उन्होंने नहा लिया होगा तो आप किसी को भेजो ना, भीम भैया को भेजो कि उनको लेकर आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा भोजन तो है ही नहीं कृष्णा, अभी वो आ जाएंगे तो क्या क्या खिलाएंगे उनको, अच्छा है भले नहीं आए। तो कृष्णा ने कहा नहीं ऐसा नहीं, अभी वो हमारे अतिथि हैं, वो नहाने गए तो उनको जाके ये बताएं तो सही कि भाई प्रसाद तैयार है आप लोग आ जाओ। तो भीम भैया गए वहां पर देखने के लिए तो कोई एक उनका शिष्य नहीं था वहां पर, जो साधु संत बैठे हुए थे। तो बोला यहाँ पर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य आए थे। तो बोला हाँ उनके पीछे तो ऐसा लग रहा था कि कोई भूत बढ़ गया है, कोई इधर भागा कोई उधर भागा कोई उधर भागा। तो कुंती महारानी याद करा रही है भगवान को कि वहां पर वनवास कृच्छ्रता कि वहां पर मेरे पुत्रों के ऊपर कितने कितने कष्ट आए। एक बार क्या हुआ कि द्रौपदी को अपहरण कर दिया जयद्रथ ने और वो मिली नहीं रही थी, सब लोग ढूंढ रहे थे कहाँ है। और कृष्णा को जब द्रौपदी ने याद किया और कृष्णा ने आकर उसकी रक्षा की और वो शाम होने से पहले ही पुनः वहां पर आ गई, तब युधिष्ठिर महाराज बहुत हताश हो गए थे और मार्कंडेय ऋषि जो वहां पर आए उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आपने कभी इतिहास इतना आप जानते हो, आपने कभी इतिहास में किसी भी जीव के ऊपर इतने कष्ट देखे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कष्टों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कभी आप शुरू से मेरी लाइफ को देखो, कभी कौन से कष्ट आते हैं मेरे जीवन में, कभी कौन से कष्ट, आज मेरी पत्नी का भी अपहरण हो गया, किसी के जीवन में इतने कष्ट आए कभी? आप बताओ कभी इतिहास में किसी और के जीवन में ऐसे कष्ट? तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा युधिष्ठिर आपकी पत्नी को अभिहरण किया गया था दोपहर को और शाम को वो वापिस आपको मिल ही गई। आप श्री रामचंद्र भगवान को जानते हो, उसकी पत्नी जब गई थी इतने सारे महीनों तक वो राक्षस के पास थी और कितना कष्ट, उनका भी राज्य छीन लिया गया। आपको तो 12 वर्ष का वनवास मिला, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला और उसके बाद भी वो उनके पुत्र भी बाद में भी वो चले गए थे वनवास में और उनको पुत्र उत्पन्न हुए थे वो भी वनवास में थे। बहुत बहुत यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने उनको और भी बहुत सारी कथाएं इतिहास की बताई कि महाराज हरिश्चंद्र को इतने कष्ट मिले और बोला आपके कष्ट तो कष्ट है ही नहीं, हर कष्ट में भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। कष्ट आ रहा है साथ में कृष्ण आ रहा है और कृष्ण के अधिक कष्ट कष्ट रह नहीं जाता, वो तो और भी सुख बन जाता है। तो तब युधिष्ठिर महाराज को ये रियलाइज हो कि वाकई में कृष्ण हमारी हर कष्ट से हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। और आगे कुंती महारानी कह रही है मृदे मृदे नेक महा रथास्त्र, तो कि उसके अतिरिक्त जब वनवास के बाद हम पुनः गए तो भी उन्होंने युद्ध किया हमारे साथ कौरवों ने और युद्ध में भी अनेक महारथियों के साथ मेरे पुत्रों का युद्ध हुआ और आपने हर क्षण उनकी रक्षा की, समस्त विपत्तियों में भगवान आपने हमारी सहायता की। और अभी द्रोणास्त्र तश्चास्मि हरे भी रक्षिता, अभी द्रोण के पुत्र ने द्रोणी ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उस समय भी हे हरि, भगवान को हरि कहकर पुकारते हैं। हरि का मतलब होता है जो भक्तों के संकट को हरता है, जो भक्तों के समस्त संकट को और उसके साथ साथ भक्तों के मन को भी हर लेता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दोई मुख्यतम। वैसे तो हरि के अनेकों अर्थ हैं, परंतु उनमें दो बहुत ज्यादा मुख्य हैं, और वो क्या है? सर्व अमंगल हरे, कि अगर आपने हरि का नाम ले लिया एक बार तो समझो आपके जीवन में आने वाले समस्त अमंगल जो हैं वो उसी समय समाप्त हो जाएंगे। सर्व अमंगल हरे, और उसके साथ साथ क्या? प्रेम दय हरे मन। साथ में केवल नाम लेने से अमंगल खत्म नहीं होंगे, आपको कृष्ण इतना प्रेम देंगे, कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं, इतना प्रेम देते हैं जब उनका हम नाम लेते हैं, तो फिर सारा अमंगल जैसे समाप्त हो जाता है कृष्ण का संपर्क आने से, उनका नाम लेने से। और भगवान इतने सुंदर लगते हैं कि हमारा मन जो कि इन भौतिक वस्तुओं के आकर्षण के कारण बार बार संकट में आता है, और फिर वो क्या करते हैं, उस मन को ही हार लेते हैं कि ये मन मेरे चरणों में लगा लो। और जब ये मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो फिर कभी संकट आता ही नहीं है। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर कुंती महारानी भगवान की कृपा के विषय में बता रहे हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की सहायता करने से ऊबते नहीं है। इस संसार में तो कोई अपनी संतान जो है वो भी अपने माता पिता की सेवा से ऊब जाती है, और सदैव जब बूढ़े माता पिता खासकर जब हो जाते हैं तब ये सोचते हैं कि हाँ अभी भगवान इनको अपने पास बुला ले, कितना भले वो क्या ऊब किससे गए हैं, वो उनके सेवा से ऊब जाते हैं, लेकिन बोलते हैं अभी इतना कष्ट में है, इसको बुला ले भगवान अपने पास तो ये सुखी हो जाए। मतलब वो इतना परेशान हो जाते हैं, अपने माता पिता की भी कोई सेवा नहीं कर सकता, और सोचता है कि ये हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। एक बार किसी की दवाई कराते हैं, दो बार कराते हैं, तीन बार, कोई बीमार होता है बार बार बीमार होता है, फिर ऐसा बोलते इससे बेहतर मर जाए बार बार बीमार होता है। परंतु जिस प्रकार माता कभी भी अपने बच्चे की सेवा करते हुए उबती नहीं है, और भगवान के हृदय में करोड़ों करोड़ों माताओं का स्नेह है, वैसे भगवान जो है वो कभी भी अपने भक्तों की विपत्ति को हरते वक्त उबते नहीं है। अभी देखो यहाँ पर एक बार विपत्ति आती, दो बार विपत्ति आई, तीन बार विपत्ति आई, चार बार, यहाँ पर तो हमने पढ़ा जीवन भर तो विपत्ति ही आई है उनके जीवन में। कुंती महारानी के जीवन में हर क्षण विपत्ति। वास्तव में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए भक्त की कि वो सदैव भगवान के अपने उपकार के विषय में सोचे, भगवान के प्रति कि ऐसा विचार होना चाहिए कि भगवान आपने हमारे साथ बहुत बहुत हमारी हर कार्य में प्रतिक्षण आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी सहायता की, हमारी योग्यता नहीं। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो जीवन भर कितने सारे संकट आए, लेकिन भगवान की कृपा से आज हम इतने, हमारे ऊपर कृपा है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के इन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करते। जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं करते हैं, उनको भी भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, वर्षा देते हैं, वायु प्रदान करते हैं। वो मानते नहीं, वो बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो निराकार है, भगवान का तो कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है। फिर भी भगवान बोलते भले तुम मुझे नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी मैं अपने स्नेह को कम नहीं करूंगा, हर एक चीज हर एक वस्तु उनको भी प्रदान करते हैं, तो अपने भक्तों से क्यों नहीं करेंगे वो इतना स्नेह। कुंती महारानी कहती है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, मैं अनाथ थी, और मेरे आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं था, इसीलिए आपने हमेशा मेरे ऊपर अहितु की कृपा की। मैंने आपकी भक्ति नहीं की है, पर आपने अहितु की कृपा के कारण सदैव मेरी सहायता की, सदैव मेरी संकटों से रक्षा की। वास्तव में भक्तों, हमें सदैव भगवान के उपकारों को याद करना चाहिए, और जब हम भगवान के उपकारों को इस प्रकार से याद करेंगे, तभी हम सही मायनों में भगवान की भक्ति कर सकेंगे, सही मायनों में भगवान से प्रेम कर सकेंगे और भगवान को समर्पित कर सकेंगे अपने आप को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।